हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जैसे ही अक्षत ने सोनल परी का हाथ पकड़ा, सोनल परी का दिल किया कि वो अपनी जादुई शक्ति का यूज करके इसे बकरा या मुर्गा बना दे। लेकिन अगले ही पल सोनल परी अब काफी हैरान हो गई थी। वो सोचने लगी थी कि उसे परियों की तरह बर्ताव नहीं करना है, उसे नॉर्मल इंसानों की तरह ही बर्ताव करना है। तभी उसने अक्षत से कहना शुरू कर दिया था, हेलो, कौन है आप और ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? देखिए, आप अमीर होंगे, अपने घर के होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी गरीब रिक्शा वाले को इस तरह से रोके, उसमें सवार सवारी के साथ बदतमीजी करें। सारी बातें सुनकर आसपास के लोग वही इकट्ठा होने लगे थे। उन्होंने आकर अक्षत को घेर लिया था और तभी काव्या की ओर से हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। लेकिन अक्षत बार बार सिर्फ और सिर्फ काव्या को ही घूरे जा रहा था, क्योंकि काव्या उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा नहीं था कि काव्या ने अपनी खूबसूरती छुपाने की कोशिश नहीं की थी, उसने अपने बड़े से चश्मा के पीछे अपनी खूबसूरती को छुपाने की बड़ी ही कोशिश की थी। लेकिन अब वो नाकाम हो चुकी थी, क्योंकि अक्षत की आंखें बार बार उसके पूरे जिस्म पर फिसलने लगी थी। कहीं ना कहीं काव्या को भी अक्षत पहली नज़र में थोड़ा सा ठीक लगा था, लेकिन वो ये भी समझ चुकी थी कि ये इस वक्त इंसान नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक दानव है। तो इसीलिए काव्या उससे नहीं उलझना चाहती थी और जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी। वेल, जब सभी लोगों ने वहां पर आकर उन्हें घेर लिया, तो अक्षत के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका था और काव्या ने राहत की सांस ली थी और जल्दी ही वो अमन के ऑफिस की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं अगली सुबह जैसे ही अमन तैयार होकर अपने ऑफिस में पहुंचा, तो अमित उसे देखकर हैरान हो गया था और कहने लगा था, अरे अमन, तूने तो मना किया था कि तू कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाएगा, तो फिर अचानक से तू ऑफिस कैसे आया? तू कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो कर देता। मैंने जितने भी क्लाइंट्स को मैं मीटिंग पोस्टपोन की है, मैं उनको कम से कम आज का टाइम दे देता। जैसे ही अमित ने इस तरह की बातें की, तब अमन उसकी ओर देखकर कहने लगा था, यार, एक्चुअली मेरा कुछ पर्सनल काम था, तो इसीलिए मैंने छुट्टी ली थी, और ये मेरा ऑफिस, मुझे लगता है कि मेरी जब मर्जी मैं यहाँ से आ सकता हूँ और जा सकता हूँ, और मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अमन ने जल्दी ही अमित को एक मुँह तोड़ सा जवाब दे दिया था, और तब अमित उसकी ओर देखकर कहने लगा था, अरे यार, तू तो बुरा मान गया, मैं तुमसे ऐसे ही कैजुअली पूछ रहा था। अच्छा, चल बता, क्या पिएगा? तेरे लिए कुछ चाय, नाश्ता, कॉफ़ी बनवा दूँ? जैसे ही अमित ने ये कहा, अमन को अपनी सख्ती का एहसास हुआ। उसने उसे कहा था, अरे कोई नहीं यार, एक्चुअली बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा परेशान था। अच्छा, तो ये बता, तेरी शादी थी ना, तूने बताया था, तो तेरी शादी की तैयारी कैसी चल रही है? जैसे ही अमन ने अमित की शादी के बारे में पूछा, अमित मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था, यार, शादी तो तुझे पता ही है ना, बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है, लेकिन अभी तक ना तो तूने तारा भाभी एक बार भी मुझसे मिलने के लिए घर पर आया। कर एक बार आ रहा तो सही, और मेरी थोड़ी सी तैयारी पर मदद तो करो। मैं जानता हूँ यार, तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन मैं तेरा यार बचपन का दोस्त हूँ, तुझे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अमित ने बिल्कुल इंसानी तरीके से अमन को फ्रेम करने की कोशिश की थी, और अमन उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराहट के साथ बोला था, तू फिक्र ना कर अमित, मैं तेरी तारा भाभी के साथ तेरे घर जरूर आऊंगा और सारी तैयारियां देखूंगा। डोंट वरी, जब मैंने तुझे कह दिया है, तेरी शादी मैं ही करवाऊंगी, तो मतलब मैं ही करवाऊंगा। ऐसा कहकर अमन अपने केबिन में जाने लगा था और जाने से पहले अमित से बोला था, देखो, मुझसे मिलने के लिए कोई आने वाला है, और तो तुम उसे बिल्कुल भी मत रोकना, उसे सीधा मेरे केबिन में भेज देना। ऐसा कहकर अमन जल्दी ही अपने केबिन पर जाकर बैठ गया था और बेसब्री से काव्या के आने का इंतजार करने लगा था। कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में इस वक्त कमिश्नर साहब की कही हुई ये बातें ही गूंज रही थीं कि कितनी बुरी तरह से कितने सालों से लड़कियों के मर्डर हो रहे थे, वो भी हर महीने, और उनकी बड़ी ही बुरी तरीके से लाश मिला करती थी और खूनी का आज तक कुछ पता नहीं चला था। तो कहीं ना कहीं अमन को लग रहा था कि क्योंकि ये काम जरूर उसके किसी न किसी जिन्नात का है, क्योंकि अगर ये काम किसी जिन्नात का नहीं होता तो उस खूनी के खिलाफ कुछ न कुछ तो सबूत मिलता, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाया था, इसीलिए शायद कमिश्नर ने अपने उस केस को शैडो यानी कि परछाई का नाम दिया था, क्योंकि जितनी भी लड़कियों की मौत हुई थी और लड़कियों के घर वालों से पूछताछ करने पर सभी में एक बात बड़ी ही कॉमन थी, जिन भी लड़कियों का मर्डर पहले हुआ करता था उन्हें एक परछाई नजर आया करती थी, और वो अपने किसी जानने वाले या अपने माँ बाप अपने दोस्त से इस बात के बारे में जिक्र करती थी कि उन्हें हर जगह परछाई सी नजर आ रही है, और वो परछाई उन्हें पूरे हफ्ता भर पहले से ही नजर आना शुरू हो जाया करती थी और उसके बाद उनकी किडनैपिंग हुआ करती थी। तो ये सारी बातें इन सभी केस में बड़ी ही कॉमन थी, जो कि कमिश्नर साहब आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करने के बाद ही अपनी टीम वर्क के साथ इस बात की तह तक वो पहुंचे थे। और काफी सारे लोगों के जितने भी रिलेटिव्स की लड़कियों की जान गई थी उन सबके बयान उनके पास मौजूद थे। तो सभी में अगर कुछ बात पड़ा थी तो वो थी सिर्फ और सिर्फ शैडो यानी कि परछाई थी। तो इसीलिए अमन के दिमाग में कहीं ना कहीं एक और आइडिया आ चुका था उस परछाई वाले के बारे में पता लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले वो काव्या से मिलकर इस केस की सारी डिटेल्स लेना चाहता था जो कि उसके पास थी। काव्या अक्षत के जाने के बाद जल्दी ही अमन के ऑफिस के बाहर पहुंच चुकी थी और जैसे ही उसने उस ऑफिस को बाहर से देखा तो वो देखती रह गई थी, क्योंकि वाकई अमन का ऑफिस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। और काव्या मन ही मन में सोचने लगी थी कि तारा परी कितनी ज्यादा खुशकिस्मत है कि उसे परीलोक के साथ साथ इस तरह से पृथ्वी लोक पर भी रहने का मौका मिल रहा है और उसे इतना हैंडसम और चार्मिंग पति मिला है। वेल, सोनल ने ज्यादा ना सोचते हुए जल्दी ही अमन के ऑफिस के अंदर एंट्री ले ली थी और सबसे पहले वो उसकी नजर किसी और पर नहीं बल्कि मलिका पर पड़ी थी। मलिका ने जैसे ही सोनल परी तो देखा तो वो हैरान हो गई थी। मलिका तो समझती थी कि उसके उस ऑफिस में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है, लेकिन सोनल परी को देखने के बाद उसे अब गलतफहमी नजर आने लगी थी। वो सोचने लगी थी, तारा से कंपटीशन करना तो बेकार है, वो तो मालिक है, वो तो अमन की बीवी है। लेकिन तारा के बाद अगर उस ऑफिस में कोई खूबसूरत था तो वो सिर्फ और सिर्फ मलिका थी। लेकिन आज काव्या को देखने के बाद मलिका को ऐसा लगने लगा था मानो कि वो किसी न किसी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। वेल, जैसे ही मलिका ने काव्या को देखा तो वो उसके पास आई थी और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहने लगी थी, यस मिस, कौन है आप और किसी से मिलना है आपको? मलिका ने बड़े ही एटीट्यूड से काव्या से कहा था और काव्या यानी कि सोनल परी ने मलिका को अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया था। पहले तो सोनल परी ने ये सोचा कि आखिरकार ये है कौन जो कि उसे रोक रही है,
लेकिन अगले ही पल उसने अपनी पलकें झपकते हुए अपने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहली नज़र में उसने अपनी जादुई नज़रों से इस बात के बारे में पहचान लिया था कि उसके सामने खड़ी हुई ये खूबसूरत सी जवान औरत की खाल पहने हुए असल में एक बड़ी ही बदसूरत सी बुढ़िया है। जैसे ही काव्या की आंखों के सामने मल्लिका का असली चेहरा आया तो उसके होठों पर अपने आप ही एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाई थी और वो जोरों से हंसने लगी थी। जैसे ही काव्या इतनी बुरी तरह से मल्लिका पर हंसने लगी, मल्लिका को काफ़ी तेज गुस्सा आया था। उसे इस बात का यकीन हो चुका था कि ये लड़की उस पर यानी कि मल्लिका पर ही हंस रही है, तो उसने उसकी ओर देखते हुए कहा था, है लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझ पर हंसने की और तुम हो कौन और यहाँ कर क्या रही हो? जैसे ही मल्लिका ने थोड़ी सी सख्त आवाज में ये कहा तब काव्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जल्दी से चुप होकर अपने चारों तरफ देखने लगी थी, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ थे उस वक्त सभी के सभी उन्हें ही देख रहे थे। और तब जल्दी से काव्या बोली थी, ओ आई एम सॉरी सॉरी मैडम, वो एक्चुअली मुझे मिस्टर राठौर यानी कि अमन सिंह राठौर से मिलना है, मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट है। ऐसा कहकर काव्या ने जल्दी से मल्लिका से माफ़ी मांगी थी और मल्लिका उसकी ओर देखते हुए कहने लगी थी, अच्छा तुम अमन सर से मिलने के लिए आई हो, लेकिन क्यों, आखिरकार हो कौन तुम? तभी काव्या ने अपना पूरा इंट्रोडक्शन देते हुए कहा था कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ और मैं अमन सर से मिलना चाहती हूँ। तब मल्लिका मन ही मन में सोचने लगी थी कि अमन को अचानक से किसी क्राइम रिपोर्टर की क्या जरूरत आन पड़ी और उसे क्यों मिलना चाहता है। फिलहाल इससे पहले कि मल्लिका कुछ कहती तभी अमित वहाँ आ गया था और मल्लिका और काव्या की ओर देखते हुए कहने लगा था, क्या हुआ मल्लिका, ये कौन है? तभी मल्लिका ने अमित को बता दिया था कि ये अमन से मिलने के लिए आई है। तब अमित को काफी हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत लड़की अमन से मिलने के लिए क्यों आई है, क्योंकि जहां तक अमित अमन को जानता था अमन की नज़रों में सिर्फ और सिर्फ तारा यानी कि उसकी बीवी ही सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो वो किसी और को एक्सेप्ट भी नहीं किया करता था। लेकिन अब काव्या को यूं बोलना कहीं ना कहीं अमित को किसी और ही अलग दिशा में ले गया था और क्योंकि उसे अभी अमन की कही हुई बातें याद थी कि कोई उससे मिलने वाला आने वाला है तो वो उसे बिना रोके उसके केबिन में भेज दे। इसीलिए अमित ने भी देरी ना करते हुए काव्या को अमन के केबिन में जाने का इशारा कर दिया था और काव्या जल्दी से अमन के केबिन की ओर बढ़ने लगी थी और मल्लिका और अमित दोनों ही बड़ी ही गहरी नजरों से काव्या के जाते हुए देखते रहे थे। वहीं काव्या को इस बात का एहसास हो गया था कि ये दोनों उसे बड़ी ही बुरी तरह से घूर रहे हैं, क्योंकि भले ही वो आगे चल रही थी लेकिन अपनी जादू की शक्ति के द्वारा वो उन दोनों की शक्ल को भी देख पा रही थी। तब काव्या सोचने लगी थी, इन्हें देखना है तो देखने दो, और मुस्कुराते हुए जल्दी ही अमन के केबिन में चली गई थी। वहीं अमन जो कि काव्या का ही इंतजार कर रहा था, जैसे ही उसने काव्या को देखा तो वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा था और कहने लगा, आइए मिस काव्या, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अमन के चेहरे पर हालांकि मुस्कुराहट बहुत कम ही आती थी और जब से उसकी बीवी गई थी तब से मुस्कुराना तो वो भूल ही गया था, लेकिन अमन अपने आप को काव्या के सामने बिल्कुल नॉर्मल इंसान दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हल्का सा मुस्कुराकर और एकदम नॉर्मल बात करके वो काव्या को पूरी तरह से पूरा नॉर्मल इंसान दिखने की भले ही कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका एटीट्यूड इतना कमाल का था कि उसका एटीट्यूड और पावरफुल ओरा उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होने दे रहा था। वेल, काव्या जैसे ही उसके केबिन में आई तो अमन को उसके जिस्म में से आई हुई भीनी भीनी सी खुशबू उसके दिलो दिमाग में समा गई थी। कुछ देर तक तो वो काव्या को निहारता रहा था, क्योंकि काव्या के जिस्म में से तारा परी के जैसे ही बड़ी ही खूबसूरत सी और स्मेल आ रही थी। और तब काव्या ने उसे आकर मॉर्निंग विश किया था। काव्या की आवाज़ सुनकर अमन जल्दी से अपने होशो हवास से वो बाहर लौट आया था, क्योंकि वो अब अपने तीसरे जिन को ढूंढने में देरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे जल्द जल्द अपनी बीवी तारा से मिलना था और अपने बच्चों को प्यार करना था, क्योंकि उसे पता था कि जिन्नातों का वंश 4 महीने के अंदर अंदर आने वाला है। तो इसीलिए उसके पिता यानी कि जिन महाराज अमन का उसके साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वेल, तभी काव्या ने मुस्कुराकर अमन को हेलो किया था और अमन ने उसे बैठने के लिए कह दिया था। बैठते ही काव्या ने अमन से कहना शुरू कर दिया था, जी सर, आपने मुझे बुलाया, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार आप किस स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं। मैं जिस क्राइम स्टोरी को फॉलो कर रही हूँ, क्या मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूँ, या मैं जो क्राइम स्टोरी ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुकी हूँ ये मैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन दूँ? तभी अमन ने काव्या से कहा था, मिस काव्या, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल मैं आप किस स्टोरी को फॉलो कर रही हैं। तभी अचानक काव्या ने अपने मुंह से कहा था, शैडो, क्या काव्या और अमन दोनों मिलकर वक्त रहते एक और लड़की की जान जाने से रोक पाएंगे? क्या अक्षत अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? कल काली शक्तियों का मालिक अमित अमन के जिस्म के अंदर अपने शरीर के भाग दानव को प्रवेश करा पाएगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।